সিন্ধুভ্যৈ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমঃ বদনায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরদ্দিশে নমঃ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ মহাভাব স্বরূপতম কৃষ্ণপ্রিয়া বরিয়সি প্রেমভক্তি প্রদেবী রাধিকেতাং নমাম্যহম্। রাধি বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী কৃপয়া নিজ পদাব্জ দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাম পাদরণুমভীক্ষ্ণশ যশাং হরি কথোদ্গীতম পুনাতি ভুবনত্রয়ম্। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীয়দ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয়, গুরু পরম্পরা কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, সপার্ষদ গৌর হরি কি জয়, গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদ সঞ্জীব কি জয়, ভক্তবিঘ্ন বিনাশ শঙ্কর নৃসিংহদেব কি জয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, সর্ববিশ্বতা গিরিরাজ গোবর্ধনজীব কি জয়, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনজীব কি জয়, ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়, ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়, ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী কি জয়, ব্রজদেবীগণ কি জয়, জয় হরিনাম সংকীর্তন কি জয়, চাতুর্মাস্য ব্রত কি জয়, জয় কার্তিক ব্রত কি জয়, সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌর প্রমানন্দে হরি হরি। অভি তক হাম লোক কুরুবৈষ্ণব ভক্তি কৃপা সে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করনে কা সৌভাগ্য লাভ কিয়া আর হাম লোক চেষ্টা করনে পর ভি কোই ভি কার্য সফল নেই হো সকতা হে। ভগবান কহতে হ্যাঁ, ক্যা কহতে হ্যাঁ, আপন ইচ্ছা জীব কোটি বাঞ্ছা করে, কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা কিছু ফল নাই ধরে। জীব কিতনা ভি চেষ্টা করে ভগবত ইচ্ছা কে বিনা ও পরিপূর্ণ নেই হতা, ফলীভূত নেই হতা। চেষ্টা কর সকতে হ্যাঁ, এক অসৎ চেষ্টা হয় এক সৎ চেষ্টা হয়, কিন্তু দোনোই আপনার স্বতন্ত্রতা হয়। আম অসৎ করেঙ্গে তো খারাপ মিল ফল মিলেগা, আর বুরা করেঙ্গে তো ভোগনা পড়েগা, আর সব আচ্ছা কাম করেঙ্গে তো আচ্ছা ফল আয়েগা, কিন্তু দোনোই তো ফল দেখারে ভাগ যায়গা, তো ফির ক্যা করেঙ্গে। এসে কহতে আমার রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ন ধর্মম ন ধর্মম শ্রুতিগণ নিরুক্তম কির করু, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা পরিচর্যা নিহতনু, শচিষু নাম নন্দীশ্বর প্রতিশুদত্তে গুরুবরম মুকুন্দ পৃষ্ঠত্যে স্মর পরমেশ্বর মনুমন। কতে মায় ধর্ম ভি নেই জানতা অধর্ম ভি নেই জানতা, ধর্ম কি তরফ যায়ঙ্গে তো বিপদ, অধর্ম কি তরফ যায়ঙ্গে তো অর বিপদ। হ্যাঁ, এসে হাম কুছ নেই জানতে হ্যাঁ, হাম তো ইতনা জানতে হ্যাঁ सचिनंदन गुरुदेव मुकुंद पृष्ठ हैं, भगवान के अत्यंत प्रियजन हैं, और सचिनंदन और नंदनंदन अभिन्न हैं, अलग अलग नहीं हैं। यदि उनके पास प्रार्थना किया, हमारा भला बुरा जिम्मेदारी वही लेंगे, सोचेंगे वही कैसे मेरा कल्याण होगा, आगे मैं कैसे चलूँगा, सब कुछ व्यवस्था वही करेंगे। यदि हम कुछ विचार कर लिया कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है, ये मैं करूँगा, तो देखा जाता है या तो कर नहीं सकता और करने पर और विपद है। कितने प्रकार की बाधाएं हैं, झंझट वो अतिक्रम करके आगे बढ़ेंगे, नहीं कर सकते। स्वतंत्र जीव कुछ करेगा तो बस उसका परिणाम कहाँ तक जाएगा। इससे भगवत आदेश निर्देश आज्ञा अनुज्ञा का अपेक्षा करना चाहिए। कोई भी कार्य करने के पहले कम से कम प्रार्थना होना चाहिए। आज यदि हम नहीं समझते भगवान के आदेश निर्देश प्रेरणा, तो क्या करना चाहिए, साक्षात दो भगवत प्रतिनिधि गुरुपाद बंधु या महाभगवत वैष्णवजन उनके पास प्रार्थना करना चाहिए, साक्षात रूप में आदेश निर्देश की अपेक्षा करना चाहिए। और नहीं तो यदि जीव के स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, हाँ, तो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए जीव को स्वतंत्रता दी गई। तो आज अंतिम दिवस है चातुर्मास्य का और कार्तिक व्रत का। जो चंद्रमास है उसमें आज समाप्त होगा, किंतु आकाश दीपदान अभी तक चलेगा, कार्तिक अभी समाप्त नहीं हो रहा है, तो चलेगा आखिरी 17 तारीख तक। आज 8 है तो और 9 दिन और चलेगा, क्योंकि एक 16 वर्ष है, एक चंद्र वर्ष है। वैष्णव लोग चंद्रमास मानते हैं, इसलिए उनका कार्तिक आज समाप्त हो जाएगा। दामोदर व्रत नियम सेवा समाप्त करते, किंतु जो 16 वर्ष मानने वाला उनका चलेगा अभी 17 तारीख तक, अर्थात आकाश दीपदान उस दिन तक चलेगा। और कल से कात्यायनी व्रत शुरू होता है। इसमें लोगों का बहुत डर होता है कि देवी की पूजा करा तो क्या होगा, काली दुर्गा भद्रकाली या चंडी भैरवी, इन लोगों की पूजा करना वैष्णव के लिए तो उचित नहीं है, भक्तों के लिए। और किया गोपियों ने, भले वो कर ले, उनको किससे डर लगता है, आखिरी दिन कृष्ण ने उनका वस्त्र हरण कर ली है, और पानी के अंदर में पड़े रहे, ठंडा के मारे मरते रहे, कष्ट कितना, सुबह सुबह 3 बजे उठ के जाओ, और फिर और विपद है क्या, और किसी के नहीं रहेंगे, बस न घर का न घाट का, किसी का नहीं हो, तो भगवान के लिए समर्पण कर दिया, सारा जीवन रोते कलपते तड़पते रहे। प्रभु ने न तो द्वारका के रानी बनाया, न तो मथुरा के पटरानी बनाई, और उनको छोड़ छाड़ कर भाग भी गए, तो लोगों का बहुत डर भी होता है। चलो ये सब आलोचना हम लोग आगे करेंगे या सुनेंगे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास कितना दिन, महाप्रभु जगन्नाथपुर में जब तक विराजमान, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के निकट विराजमान थे, तो स्वरूप दामोदर प्रभु के निकट रघुनाथ दास गोस्वामी को समर्पण कर दिया। क्योंकि आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नहीं थे जी, आर सब मरे कारण, यदि आश्रय लेकर के यदि कोई रहता है ना, तो भगवान उसको त्याग नहीं दे सकते, और नहीं तो आश्रय नहीं लिया स्वतंत्र है तो भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करते। तब स्वरूप दामोदर प्रभु के पास दे दिया, और सब दिन स्वरूप दामोदर प्रभु महाप्रभु के साथ क्या वार्तालाप होता, हरिकथा सार निर्जास उनको सुनाया करते। तो चातुर्मास्य कार्तिक व्रत नियम सेवा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत जितना जो कुछ हो सकता है भक्त लोग पहले आते रथ यात्रा के, फिर चार महीना पूरा महाप्रभु के साथ रहते, इसके बाद महाप्रभु सबको विदाई देते। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी कभी महाप्रभु को छोड़कर के बाहर गए नहीं। हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर, रायरामानंद आदि, वाणीनाथ, गोपीनाथ, सार्वभौम पंडित, काशी मिश्र महाराज, प्रताप रुद्र, वो तो सब समय रह नहीं सकते, किंतु जो महाप्रभु के नित्य सेवक, प्रिय सेवक, सबसे महाप्रभु के नज़दीक। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी के सौभाग्य क्या है, वो स्वरूप दामोदर के प्रभु के कृपा पात्र नहीं, सबके कृपा पात्र थे, स्नेह के पात्र थे। हाँ, अब वो जब महाप्रभु के विचारधाराओं को स्वरूप दामोदर प्रभु से संकलन किया तो ब्रज में आकर के महाप्रभु का अंतर्ध्यान और गोस्वामियों के सबके, तब ब्रज में आकर के राधा कुंड में वास करने लगे। तब उन्होंने बतलाया, गुरु गोष्ठी गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगने समन्त्रे सिनामने ब्रजनव जुवद्वंद स्मरणे सदादम्बम हित्वा कुरु प्रतिमति पूर्वामति तरामये वये भात शांत चतुर्भिरवि जाते धीतप्रद। कहते हैं महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी, यदि भजन करना है, भगवान के प्रति विधान करना है, तो सबसे पहले गुरु गोष्ठी बतलाया, गुरुकरण करो। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बतला दिया, गुरु गोष्ठ अर्थात ब्रजजन होना चाहिए, ब्रजवासी होना चाहिए, और दूसरा गुरु करने से कोई लाभ नहीं होगा। हैं, द्वारका के, मथुरा के, या कोई के भी गुरु कर लिया तो वो गुरु खींच करके वहीं ले जाएंगे। हम लोग कटु आलोचना नहीं करते, किंतु शास्त्र के विचारों को जो है देखना पड़ेगा। किसी एक समय मेरा भाई वृंदावन में आई, भजन करती, क्या मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, सब समय गाती नाचती कीर्तन करती, आखिरी में द्वारका चले गए और द्वारकाधीश से मिल गए। हाँ, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते, यदि दास गोस्वामी कहते हैं, यदि मैंने सुन लिया मेरे श्रीमती राधारानी द्वारका में है, तो बिना पंख का मैं पैर नहीं, बिना विमान का उड़ करके वहीं चला जाऊँगा। हमें किसी की कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं, गोपाल का भजन करना आसान हो सकता है, किंतु राधा का भजन करना बड़ा कठिन है, या उनका आश्रय अनुगत्य लेना। तो उन्होंने क्या कहा, गुरु गोष्ठ, तो एक गुरु नहीं हुआ, गुरु द्विवचन है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। हाँ, यह तो अंतर्जामी परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, वही प्रेरणा देते हैं, और पथ प्रदर्शक गुरु जो मार्गों को बतलाने वाले, भगवान अहितु कृपा करके किसी को भेज देते हैं, जाओ इनका आगे बढ़ाओ, आगे ले चले आओ, सत मार्गों में लाओ और सत पथ प्रदर्शन करो। और फिर एक भजन गुरु होता है, वो कैसे उन्नति करेंगे, उसके लिए सचेष्ट रहते हैं, वो भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होता है। ऐसे तो प्रभु की इच्छा से ही सब गुरु प्राप्त होते हैं, किंतु दास गोस्वामी कहते हैं, गुरु गोष्ठी, ये सब गुरुओं की यदि आप आश्रय लेना चाहते हैं, किंतु वो होना चाहिए गोष्ठ अर्थात ब्रजमंडल में ही, ब्रजवासी जनी। यदि ब्रजवासी नहीं हुआ तो ब्रजराज के साथ कोई संबंध नहीं। हम कितने जन्म भटकते रहे और भटकते रहेंगे, इससे गुरुकरण करना है तो ब्रजवासी जनों का। तो क्या बतलाया, गुरु गोष्ठ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कैसे होना चाहिए? यदि दीक्षा गुरु के सेवा शिक्षा और उनके जो विचारों को यदि हमें अनुभव नहीं करा सके, जीवन में मंत्र जप किया, नाम किया, शास्त्र पढ़ा, किंतु अनुभव तो नहीं है। शिक्षा गुरु का यही कार्य है केवल शिक्षा देना नहीं, अनुभव विद्य, कैसे हमारा अनुभव होगा, रियलाइजेशन, वो फीलिंग्स कैसे होगा, किस प्रकार से मैं उस मार्ग में सदा वर्तमान रहूँ और चल सकूँ। नहीं तो चांदनी चांदनी फिर अंधेरी रात, दो चार दिन उछल कूद करा, हाँ तिलक माला ले ली, नाचा कूदा, हाँ बहुत कुछ कर ली, नेट जला एकादशी चातुर्मास्य एक टाइम खाना नहीं, फलाहारी करना, कितनी उदम किया, किंतु आखिरी में देखा गया वज्र आटूनी फसका गेरो, हाँ अरे कहाँ गया वो गेरुआ वाला बाबा जी, हैं वो घर घुसा, हाँ खोपड़ी कहाँ है वो झोपड़ी में घुस गया। इसलिए ऐसा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षा गुरु ऐसे होते हैं, वो सत्मार्गों को शिक्षा देने वाला ही नहीं केवल, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मस्वपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। कैसे कृष्ण कीर्तन करेंगे, जययुक्त होगा, सब समय चिन्मय आनंद रस के द्वारा प्रभु को प्रभु की सेवा करेंगे। वो शिक्षा गुरु सब समय इन शिक्षा के द्वारा हमारा पालन पोषण करते हैं। और शिक्षा गुरु यदि दीक्षा गुरु की मर्यादा नहीं देते हैं तो शिक्षा गुरु नहीं है। और दीक्षा गुरु यदि वैष्णव के आदर सम्मान नहीं देते हैं वो भी दीक्षा गुरु नहीं है। और दीक्षा और शिक्षा गुरु लाभ करने के बाद यदि भजन भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सका, भगवत अनुभूति प्राप्त नहीं कर सका, तो भी व्यर्थ है, तभी हमारा जीवन नष्ट। इससे दास गोस्वामी ने कहा गुरु गोष्ठे, फिर गुरु ब्रजवासी हो, फिर क्या बोला गोष्ठालयसु, अर्थात गोष्ठ में रहने वाले और जो ब्रजजन हैं उन ब्रजवासियों के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। जैसे गुरु की पूजा करते हैं और वैष्णव की भक्तों की आदर करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही गोष्ठ ब्रजवासी जनों की, जिसकी ब्रज राज के साथ जिनके संबंध हैं और सब समय उनके सेवा में ही अपने समर्पित है, ऐसे जो ब्रजवासी जन हैं जिनके प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर प्रभु हैं उनके दरवाजे दरवाजे में भटकते हैं और उनके छत में हैं बिखर के भी वो नाचते रहते हैं, उनका प्रेम कैसा है, हैं ऐसे प्रेमी जनों का अर्थात ब्रजवासी जन गोष्ठालय यीशु ब्रजजनों का आश्रय लेना है और उनका आदर सम्मान करना है, प्रार्थना करना है कि हमारा कब सौभाग्य होगा, हम भी ऐसे सेवावृत्ति प्राप्त करेंगे। यदि ऐसे सेवावृत्ति प्राप्त नहीं हुआ तो अभिमान आकर के ब्रह्मवादी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, योगी बनेंगे और भोगी बनेंगे, कर्मी बनेंगे, सर्वनाश कर लेंगे अपना। आज यदि ब्रजवासी जनों के साथ रहेंगे तो आश्रय मिला तो हाँ तो जीवन सार्थक होगा। कैसे बोलते हैं रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं इसके ऊपर, और कहते हैं रागवर्तम चंद्रिका में जो रागात्मिक ब्रजवासी हैं उनके सान्निध्य में पहुंचने की चेष्टा करना बड़े सौभाग्य की बात है। उसके अनुराग में सेवा के परिपाटी के प्रति आकर्षित होना है तो क्या होगा, उसके आत्मा में अनुराग है, अनुराग के प्रभाव के द्वारा अभिषिक्त होकर के सदा सर्वदा हम संलग्न रहेंगे, सेवा में तन्मय रहेंगे। कहते हैं स्त्री सारसिक भाव परमाविष्टता भवेत तन्मय जा भवत भक्ति सात्पुर आध्यात्मिक द्वितीय। एक मंत्र उपासना में ही एक सारसी की उपासना अर्थात अनुरागमयी उपासना। मंत्र वाला भले ही सुबह शाम करे न करे मिस कर सकता है, किंतु राग मार्ग में क्या है, अनुराग है तो उनको वो कहीं भी रहे जंगल में यार वहाँ भी उनका मंगल है, वहाँ भी भगवान की सेवा करेगा। तो इससे याद आता है किसी एक समय साईं प्रभुपाद जब विदेश गए, जन्माष्टमी आया तो उनके पास खुद व्यवस्था नहीं थी, तो एक झुग्गी झोपड़ी में जन्माष्टमी का व्रत पालन कर रहे हैं, तो कैसे दीवार में खड़िया से कृष्ण का मूर्ति बना ली और उनके सामने बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी वाले भी उनके साथ है। रात के 12 बजे तक कीर्तन चल रहा है, तो अनुरागी जन जहाँ जाएंगे वहाँ भी वो प्रेमी तो प्रेमी की सेवा करेंगे ही करेंगे। वो कोई गाड़ी वाला जा रहा है बड़े सेठ साहूकार, बोले ये क्या कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रहा है यहाँ अमेरिका जैसे देशों में, तो रुक गया। वो सुनता है और झुग्गी में उनको अच्छा नहीं लगता, गंदगी है वहाँ कौन जाए है, फिर भी जहाँ करके देखा, देखा एक साधु है और कृष्ण का मूर्ति है। बोला आज क्या है, बोला जन्माष्टमी। बोला हाय हाय मैं तो कितने जन्म भूल गया, भारत छोड़ा कुछ याद नहीं है। किंतु वो प्रेमी जन कैसे करते हैं, चाहे कहीं भी जाए वन में और मन में वो अपने सेवा करेगा ही। तो इसी कहते गुस्सा लईसु, फिर बतलाया सुजने भूसुर गने। सुजन सज्जन, सज्जन व्यक्ति जिनके अंदर कपटता नहीं है, कपटता हो ले दूर प्रवेश प्रेमेरपुर, छल कपट नहीं करता है, हाँ दिखावा नहीं करता, लोगों को ठकाने के लिए हाँ कुछ नोटोंगी नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। तो ऐसे सज्जन हैं सब समय हाँ, जिनके हृदय सद्वस्तु अर्थात बलदेव प्रभु गुरुपाद पद्म संतजनों के लिए ही उनका हृदय है, तो ऐसे सज्जनों को भी आदर करना चाहिए अर्थात कृपा प्रार्थना करना चाहिए। फिर बतलाया भूसुर गणे, जो ब्रह्मण्य देव है भगवान स्वयं कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताया, वो ब्रह्मण्य देव का आदर होना चाहिए। सुजरे सुजाने भूसुर गणे समंत्रे, तब आसान है मंत्र करना है, बहुत रुचिकर होगा मंत्र जब शुरू किया कि नहीं मंत्र देवता हाजिर हो जाएगा हाँ, बड़े कृपा करके और उनके स्वरूप दर्शन होगा। नहीं तो क्या होगा, हम मंत्र कर रहे हैं हमारे पास कितने छवियाँ आ रहा है, पहले तो इतना नहीं आ रहा था और मंत्र शुरू कर दिया तो सारा दुनिया आ गया, और कौन कौन आ रहा है कहाँ से आ रहा है कोई अतः पता नहीं, भूत प्रेत सैयद आलाप वाला हैं क्या क्या आ रहा है कोई पता ही नहीं, और नहीं तो सो जाएगा। यदि ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश किया तो आँख बंद किया जीवा बंद कर दिया जप करने लगा सो गया, खर्राटे लेने लग गए, कितने घंटों बीत गया पता ही नहीं। किसी के समय हमारे एक महाराज हाँ प्रभुपाद जी के अंतरंग प्रिय शिष्य, रोज दिन वो पत्रिका बांटने जाते, कुछ भिक्षा करने जाते, कलेक्शन करने जाते, तो सुबह मंगल आरती हो गया, कथा कीर्तन हो गया, अब जाएंगे तो भंडारी को बोलते हैं प्रभु कुछ तो दे दो प्रसाद, रात का है सुबह का है कुछ तो दे दो, तो हाथ में इशारा कर दिया अभी रुक जाओ। किंतु वो माला मंत्र लेकर जनेऊ हाथ में लेकर बैठा, 10 मिनट गया, 20 मिनट गया, आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, प्रभु तो आँख खोलते फिर सो जाते हैं। 1 घंटा तक इंतज़ार करके बोले अब क्या करूँ है, जाना है भिक्षा में जाना है, तो कोई उपाय ना देखे। तो एक दिन प्रभुपाद जी के निकट प्रार्थना किया, प्रभुपाद भंडारी तो हाथ में जनेऊ लेकर 1 घंटा तक टाइम बिता देता है और हमें बाहर जाना है, क्या कर सकते हैं हम, उनका अभिज्ञा अनादर भी नहीं करना चाहिए कि वो जो कुछ करें हम कुछ लेके खा पी करके स्वतंत्र चल जाए, ऐसा भी नहीं होता था उन दिनों में। तो प्रभुपाद जी ने बतलाया कि मंत्र करना है तो दास गोस्वामी के विचारों को सुनो, पहले से ही गुरु के स्मरण करो तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और ब्रजवासी जनों का सुजन सज्जन वैष्णव भक्तों को जय दो, याद करो, प्रार्थना करो तो मंत्र समंत्रे श्रीनामनी, तब मंत्र जप करना आसान हो जाएगा। अर्थात मंत्र देवता आ जाएंगे ना तो मंत्र देवता के परिचर्या में सेवा में आप लग जाएंगे, उस समय आपको नींद नहीं आएगी और भूत प्रेत आएगा नहीं, कोई भी नहीं आएगा। आने तो मंत्र लेकर के बैठा तो सारा दुनिया का विश्व का पंचायत आएंगे, जो हम जानते भी नहीं है वो भी आ जाएंगे, क्यों भंडारा हो रहा है तो सभी आएगा, बहुत भंडारा चल रहा है ना तो सभी आएंगे। तो किसको भगा सकते हैं? तो आपने इतना बड़ा भंडारा खोल दिया नाम मंत्र का तो सभी आएंगे। इससे कहते हैं यदि रक्षा चाहिए तो याद करो समंत्रे सिनामनी, फिर नाम ले लिया, माला ले लिया प्रभु के नाम करने का, प्रभु तो आए नहीं, कौन क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं, किसी के हाथ में माला ऐसे पकड़ा हुआ है, एक गंड में वो माला आगे भी नहीं बढ़ा, और यदि कोई रस्सी खींची जा रहा है इतना तेज़ी से, पाँच मिनट में दो माला तीन माला भी हो गया तो क्या करेगा। इससे दास गोस्वामी ने अपने अनुभव के साथ उन्होंने लिपिबद्ध किया महाप्रभु के इच्छा से कि समंत्रे सिनामने ब्रज नव जुव द्वंद स्मरणे। महाप्रभु जी ने कहा था अमानि मानधे कृष्णनाम सदालभे ब्रज राधाकृष्ण सेवा मानसी करीबे, तो यदि ब्रजनव जुव द्वंद उनकी यदि सेवा करना है फिर अमानी मानद होना पड़ेगा, दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा, अपने मान सम्मान की इच्छा कभी रखना नहीं है, चाहना नहीं है और सोचना भी नहीं है। अपमान किया, कोई तिरस्कार किया, यही पुरस्कार है, कभी सोचना नहीं चाहिए। किंतु किससे सहन करे, यदि हम खूब सहन कर लिया तो हरिनाम क्या अपना स्फूर्ति होगा? नहीं। ये तिनादपि सुनी कहने का तात्पर्य अभी समझना चाहिए। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारिगुणे गुणी हुए कर कीर्तन होइले सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमानी हृदय। कोई ऐसे यदि दैन्य दया अन्य मान ऐसे व्यक्ति मिले हैं तो उनके पास सदा सर्वदा अपने को नौछार कर दो, प्रतिष्ठा का मत सोचो, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अभिज्ञ हूँ, कैसे मैं किसी का शरणागत हूँ प्रार्थना करूँ, नहीं। कोई भी नाम कीर्तन करता है उनका दैन्य है, दया है, सबका सम्मान देता है, दैन्य और प्रतिष्ठा की लालच नहीं है तो वहाँ प्रार्थना करना मात्र ही हरिनाम आसान हो जाएगा। और वो हरिनाम तब आसान होगा जब हरिनाम शुरू किया, कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नाम कर रहे हैं, राधा नाम कर रहे हैं तो ब्रजनाभ जीवदंड की छवि केवल उतरा नहीं, सेवा चलता रहा है। मानस सेवा करीबे बस मन कहीं नहीं, सुंदर फूल ले आया, सुंदर चंदन तैयार किया, सुंदर स्नादि करके उनको श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार करते करते कभी हाथों में मेहंदी रचा रहे तो नखुनों में, कभी उनके सुंदर अलकावली वो हरिनाम कर रहे हैं और प्रभु के स्वरूप निहार रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बस तन्मय होकर के। अब उनको सुदबुद्धि नहीं है, इससे कहा यदि ब्रज नव जुव द्वंद स्मरण ही, यदि वो स्मरण नहीं होता है तो सोचो अभी हरिनाम ही नहीं है, हरि का नाम किया, हरि के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए मानसिक सेवा कोई कल्पना नहीं है, प्रियजनों की सेवा सभी करता है। जब सुंदर एक छोटा बालक या बालिका जन्म लेता है, कितनी सेवा करते हैं, एक मच्छर न खा जाए, मक्खी न छू जाए, धूल मिट्टी न लग जाए, रो नहीं जाए, गोदी में ले लेकर के दिन भर रात भर उसको हैं। और यदि कोई उनको लाल प्यार नहीं करता है, उसके दुश्मन बन जाता है। क्या कहता है, तुमने हमारे बच्चे को देखा नहीं हैं, वो उससे लड़ लेता है। तो हमारे जो प्रेमी प्रिय प्रभु हैं, उनके लिए क्या हमारे अंदर में कोई भी लाल प्यार नहीं है हैं? एक पुतला मिल गया, मिट्टी का डेला, वो मोबाइल में रख दिया, देखता है, दिखाता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, क्या करता है हुँ? एक गुरुजी इस उपलक्ष्य लक्ष्य में एक दिन मथुरा में कथा में बोल रहे हैं, देखो एक व्यक्ति और छोड़ करके गांव देहात, वो बहुत दूर देश गया नौकरी करने, बिजनेस नौकरी कर रहा है, काम करने, तो काम करता है। सब लोग बोलते, भाई तुम इतना कष्ट क्यों करते हो, तुम्हारा तनख्वाह तो बहुत है, तुम फुटपाथ में रहते हो, किस तरह से गुजरा करते हो, कपड़ा भी नहीं पहनते हो, जाड़े में भी तुम कोई कंबल ले जाए रखते नहीं, कितना कष्ट करते हैं। बोले, मैं कष्ट नहीं, मैं अच्छा काम करता हूँ। तो क्या, मैं कम से कम खर्च करके सारा पैसा मैं घर भेजता हूँ, और घर से खबर आता है, चिट्ठी आते हैं, मेरे बालक अभी तोती बोल रहा है, दो दांत निकल आया, हंसता है, खेलता है, वाह, वो पैसा उसके लिए भेजता हूँ और मैं कितना खुश हो जाता हूँ, हमारा दुख व्यापता नहीं, क्योंकि मैं हैं, मेरा बेटा है, बड़ा होएगा, कितना अच्छा होएगा, और यदि उनके पालन पोषण नहीं करूँ कैसे होगा। तो गुरु जी कहते, देखो वो एक अपने पुतला के लिए इतना चेष्टा करता है, जो कि काल के दो दिन बाद वो निहारेगा, मैंने दुश्मन बनेगा, निश्चित बनेगा, कोई सगे होंगे नहीं, हुए नहीं, होंगे नहीं, आज तक ये भूतों न भविष्यति। तो हम तो प्रभु की संतान हैं, प्रभु हमारे लिए ऐसे इससे अधिक सोचते हैं, कब पानी देना है, कब खाना देना है, कब कपड़ा देना है, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हम ऐसे अकृतज्ञ हम उनके लिए तो सोचते नहीं हैं। हैं वो जसोदा माता धन्य है, जो कि दिन रात 24 घंटा कृष्ण छोड़ के मथुरा आया तो, द्वारका गया तो, हैं या ब्रजवासी जन कभी भूले नहीं और छूटे नहीं, उनका नित्य सेवा चलता रहा, और अधिक स्मरण से अधिक करते हैं। ऐसे हमारा स्मरण कब होगा, ब्रजवा नव जीव द्वंद्व स्मरण, तब तो ज्ञान आत्मज्ञान होगा, सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपने एक नखून को कितना पारिश मालिश करके सुंदर रखते हैं, अपने तन को रखते हैं, और प्रभु के लिए एक टाइम, एक पासिंग में एक मिनट भी नहीं है। तो दास गोस्वामी कहते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रजन अवध द्विजुव द्वंद स्मरणे सदा दम्भम हित्वा कुरु। देखो यदि ये प्राप्त करना है तो दम्भ अहंकार को छोड़ो, मैं कुछ हूँ, इंसान हूँ, या मेरा व्यक्तित्व है, क्या है, हम भूत और प्रेत, क्या है हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इससे कहते हैं, गणित दोष गुणलेषण माप ना पाओ भी, जब तुम करो भी विचार। यदि आप गिनेंगे ना, गुण का लेस मात्र नहीं है, दोष ही दोष भरे पड़े हुए हैं, किंतु कोई मेरा दोष कह के तो देखे, उनके खटिया खड़ा कर देंगे एक मिनट में, क्या क्या बोल कह रहा है मुझे, जानता है मैं कौन हूँ, हैं शेरशाह बादशाह हूँ, कम मत समझना मेरे को भी, मैं उसी समय मैं बाबा जी बन गया तो क्या हो गया, देख लेना मेरे को, देख तुम भी। अर्थात दम्भ हम कभी छोड़ नहीं सकते, अहंकार छूटता नहीं है। इससे कहते हैं दास गोस्वामी, सदा दम्भम हित्वा कुरु, कहते ओ मेरा भाई मन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, किससे अभिमान कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम अपूर्व रति, सबसे श्रेष्ठ रति मती प्रभु के लिए करो, और प्रभु के अनुयायियों के लिए। तो दास गोस्वामी जब तक महाप्रभु के पास विराजमान थे, सर्वदामोदर प्रभु ने तैयार की, यह है शिक्षा गुरु की मर्यादा। किसी एक समय महाराज जी कह रहे हैं, देखो बादशाह के यहाँ अपने लड़कों को पढ़ने के लिए बादशाह ने एक मास्टर नियुक्त कर दी, शिक्षक। तो वो बेनागार उस दिन आता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता कि बादशाह ने रखा है। तो एक दिन वर्षा हो रहा है इतना तेज़ी से और कीच हो रहा है रास्ते में, फिर भी छतरी लगा करके वो चल चल करके आया। जब आया तो देखा पैर में कीच है, राजभवन में कैसे जाएंगे, तो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जो राजकुमार है वो देख रहा है बाहर कि गुरुजी आ रहे कि नहीं, तो बरामदा में घूम रहा था, देखा गुरुजी आ गए। तो गुरुजी ने बोला, भाई थोड़ा पानी ले आओ, मैं पैर धो के अंदर जाऊँ, नहीं तो कैसे जाऊँ। तो अपने बदने में गड़ुआ में पानी भर के लाया, तो गुरुजी ने पैर धोया, धोकर के पैर पोछ के अंदर गया, क्योंकि कालीन बिछ रहा है, राजभवन है। थोड़ी देर में क्या हुआ, पढ़ा रहे हैं बच्चे को, राजा ने खबर दिया, आज पढ़ने के बाद आप मेरे से मिल के जाना। वो अंदर राजभवन में सिंहासन में बैठे, जब बोला अब इनको हड़कंप मच गया। मैंने राजकुमार से अपना पैर पानी मंगवाया, पैर धुलवाया, धोया, शायद राजा को पता तो हो ही गया, और राजा मेरे को क्या दंड देंगे वो आता पता तो है नहीं। अब बड़ा मुश्किल से पढ़ाया, टाइम तो बिताया, फिर कर्मचारी आया तो उनको बुला के अंदर ले गया। अंदर जाते राजा व्यस्त थे, इशारे से देखा दिया सिंहासन में बैठने के लिए, और बैठ गया। आप उनका पसीना छा रहा है, कांप रहा है, और बादशाह कुछ बोल नहीं रहे, जल्दी बोल दे तो समाप्त भी हो जाए, और बोले नहीं तो और घबराहट हो गया, बेचैन हो गए। फिर थोड़ी देर में 10-15 मिनट बैठे तो बादशाह बोले, आपने बहुत गलती किया हुजूर, जो दंड देना है दे दो, गलती तो मैंने किया। उनके मन में है कि मैंने पानी मंगवाया, पैर धुलवाया, और राजा कुछ और कहना चाहते हैं। फिर राजा बोले, आपको घबराने की नहीं है, आपने राजकुमार से पानी मंगवाया, अब तो उनका गला ही रुक सूख गया, सोचा अभी तो मर ही जाएंगे, न जाने अब क्या होगा। पर पानी मंगवाया तो आप तो शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो आपने अब पैर अपने क्यों धोया। फिर क्या कहने लगे, उससे क्यों नहीं पैर धुलवाया, और यदि आज आप सिखाएंगे नहीं तो आगे कैसे सीखेगा, कैसे बड़े होगा। अब तो उनका 100 किलो खून बढ़ गया है कि राजा बादशाह क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आपने पानी मंगवाया इतना काफ़ी नहीं, कम से कम वहाँ उसे पैर धुलवा करके, पैर पोछ करके, और उससे सेवा करना नहीं सीखेंगे आज, काल को वो कभी सीखेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, जन्म जन्म नष्ट हो जाएगा। तब वहाँ लिखा शिक्षा गुरु की मर्यादा, गुरु जी कहते हैं। तो ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारियों को फिर अपने सेवा में लगाना चाहिए, किंतु गुरु यदि सिखाए नहीं तो भगवान की सेवा कैसे करेगा, गुरु सेवा अधिकार देने वाले। किंतु इसका मतलब नहीं गुरु भोगी नहीं है, कि शिष्यों को भोग करने के लिए केवल मात्र अपना आश्रम में रखा। जैसे बोले तुम्हारा भालोबासा मुसलमान ने मुर्गी पोसा, मुसलमान मुर्गी पालता है, मुर्गा मुर्गी किसरी देखते बड़ा हो गया ना, झट पकड़ेगा तोड़ेगा, बस अपना अपना रसम पक करेगा, खाना पकाएगा। तो ऐसे ही गुरु शिष्य को नहीं पाले कि केवल मात्र मेरे भोगों के ईंधन जुगाए या मैं अपना भोग करूं, भगवत सेवा में समर्पण करके उनको भगवत सेवा शिक्षा दान करें। सबसे पहले मंत्र में, नाम में कैसे रुचि हो, सेवा में कैसे रुचि हो, गुरु के प्रति वैष्णव सम्मान कैसे दे, ब्रज के प्रति, ब्रजवासी के प्रति ये शिक्षा प्रदान करें, तब तो सद्गुरु हैं। आज यदि गुरु वैष्णव की शिक्षा नहीं दी और वैष्णव ने गुरु सेवा की शिक्षा नहीं दी तो ये उत्पात हैं चित्पात हो जाएगा जल्दी। इससे दास गोस्वामी ने कहा कि ब्रज गरीबास रागानुग होइया स्मरण कीर्तन करो एनिखिल काल करह जापन उपदेश सार धरो कृष्ण स्मरण जनंचास्य तिष्ठन ब्रजे समितम तत्कथा रतस्यासो कुर्जात ब्रजे वासुसदा। यदि ब्रज में वास करना है तो रागात्मिक जनों के साथ रति हो प्रीति हो वो कृष्ण स्मरण करते हैं कृष्ण स्मरण कराएंगे, वो सेवा स्मरण करते हैं सेवा सेवा स्मरण कराएंगे और कुजोगी वैभव नहीं है हमारा सर्वनाश नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग व्रत पालन करें या नियम करें किंतु यदि भगवान के जीवन प्रियजनों से संबंध नहीं हुआ और वो अनुराग यदि हृदय में प्रकट नहीं हुआ अनुरागी के लिए यदि प्रार्थना नहीं रहा तो अहंकार घमंडी देवाचार्य बन जाएंगे विपद है। इसलिए ये व्रत का यही फल है कि हम हृदय से शरणागत होकर के प्रार्थना करना सीखे। इसे बताते हैं भक्तुन ठाकुर कि जानी कि बोले तुम्हार धामेते होइनु शरणागत आपके जो धाम हैं इसमें मैं शरणागत हूँ। धामवासी जन धाम स्वरूप बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु हैं हमें रक्षा करें भगवत सेवा में अधिकार दें। तो आज शाम को फिर 6 बजे से 6:21 तक जो शाम हो जाता है अंधकार में तो चंद्रग्रहण होता है, दिन में तो होता नहीं, सूर्य ग्रहण दिन में होता है रात में चंद्रग्रहण होता है। तो ये चंद्रग्रहण लगा है तो किसी किसी देशों में उस समय रात होता है इसलिए वहाँ तो संपूर्ण पालनीय है। तो यहाँ कम से कम 5 बजे कीर्तन में बैठे तो 6:30 तक कीर्तन होए, इसके बाद नहा धोकर के रसोई रसोई होए भोगराग होगा तो शाम को सभी लोग कीर्तन में बैठेंगे क्योंकि ग्रहण के समय में हैं कुछ देवताओं का नहीं असुर राक्षसों का उत्पात बढ़ता है। उस समय यदि नाम कीर्तन नहीं किया माला मंत्र नहीं किया तो संस्कार सुकृति सब लोग छीन लेता है सब लूट लेता है बर्बाद कर देता है। खाया पिया तो ओ घुस गया पेट में तो बीमारी ऐसे कर गया उसका नाम है ग्रहणी, वो बीमारी कभी ठीक ही नहीं तो क्रॉनिक हो जाता है एकदम। ऐसे ग्रहण के समय भागवत में जैसे वर्णन है सब समय हरि कीर्तन हरिस्मरण हरिधाम हरिनाम हरिजन के साथ हैं विराजमान होना चाहिए जिससे कि हमारा रक्षा हो। कृष्ण ने इसे ग्रहण के समय सबको बुला लिया सारे विश्व को बुला लिया कुरुक्षेत्र में सामंत मंचक धर्म क्षेत्र है वहाँ सुरक्षा है। इससे शाम को कीर्तन में बैठना है। बस आज यहाँ तक रखते हैं। काल से सुबह से कात्यायनी व्रत है, सुबह मंगल आरती के बाद ही सब लोग बैठेंगे पूजा होगा स्तव स्तुति इसके बाद जो कथा कीर्तन होता है जो नियम है वो चलेगा किंतु आरती के बाद ही पूजा शुरू होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।